नमस्कार भारत, आज है 11 जुलाई दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। पेरिस में खेले गए रोमांचक यूरो कप फुटबॉल मुकाबले में पुर्तगाल ने फ्रांस को हराकर रचा इतिहास।
पोर्चुगल ने दिखा दिया कि वो एक्स्ट्रा टाइम के बादशाह है, 3 मैच वो एक्स्ट्रा टाइम में जीत चुके।
उधर विंबलडन में ब्रिटेन के एंडी मरे ने कनाडा के मिलोस रावनिक को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। जम्मू कश्मीर में तनाव अभी बरकरार, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा में 21 की मौत। मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र के कई इलाकों में आई बाढ़, गढ़चिरौली सबसे ज्यादा प्रभावित।
गढ़चिरौली में 4 तालुका में कुछ पूर का प्रॉब्लम है, एक तालुका हेडक्वार्टर का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। यूरो कप के पेरिस में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में पुर्तगाल ने फ्रांस को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ये पुर्तगाल की पहली बड़ी खिताबी जीत है। जीत के बाद देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद दक्षिण सूडान में हो रही ताज़ा हिंसा पर चर्चा के लिए आपात बैठक कर रही है। राजधानी जूबा में गुरुवार को शुरू हुई हिंसा में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। यह हिंसा राष्ट्रपति साल्वा कीर और उपराष्ट्रपति रीक माचार के समर्थक सैनिकों के बीच हो रही है। देश में 2 साल से जारी गृह युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों नेताओं ने हाल ही में शांति समझौता किया था। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत समांथा पावर का कहना है कि सेना पर नियंत्रण की चिंताजनक कमी नजर आ रही है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन का कहना है कि राजधानी जूबा में उसके दोनों ठिकानों पर भारी हथियारों से हमले हुए हैं। अमरीकी शहर डलस के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि 5 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला हमलावर और बड़े हमले की योजना बना रहा था। पुलिस प्रमुख डेविड ब्राउन ने कहा कि उन्हें इस बात के सबूत मिले हैं कि हमलावर मिकाह जॉनसन ने बड़े स्तर पर धमाके करने का अभ्यास किया था। शुक्रवार को मारे जाने से पहले जॉनसन ने पुलिस को बताया था कि वो काले लोगों की पुलिस की गोलीबारी में मौत की घटनाओं से गुस्से में है। पुलिस प्रमुख डेविड ब्राउन ने बताया,
It appears that our search of this suspect's home in Mesquite.
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेस्क्वीट में संदिग्ध के घर की छानबीन, जो उनके जर्नल और बम बनाने की सामग्री के सबूतों पर आधारित है, हमें यह मानने की ओर ले जा रही है कि संदिग्ध विस्फोट करने का अभ्यास कर रहा था और उसके पास इतनी सामग्री थी कि वो हमारे शहर और उत्तरी टेक्सस में भीषण हमले कर सकता था। अमेरिका के लुइजियाना प्रांत में हिरासत में लिए गए ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के एक प्रमुख कार्यकर्ता को रिहा कर दिया गया है। बैटन रॉग में प्रदर्शनों के दौरान डीरे मैककेसेन को हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि उन पर एक हाईवे को रोकने के आरोप हैं। जापान में उच्च सदन की आधी सीटों के लिए रविवार को हुए चुनाव के अंतिम नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पार्टी ने बेहद अहम 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री शिंजो आबे के पास देश के शांतिवादी संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का विकल्प होगा। शिंजो आबे क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत के मद्देनजर ये संकेत दे चुके हैं कि जापान को अब ज्यादा सक्रिय सैनिक भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि वो संविधान संशोधन के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने अपने आर्थिक नीतियों को अपने चुनाव प्रचार का आधार बनाया था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। आज कार्यक्रम की शुरुआत खेल की खबर से। यूरो कप फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में पुर्तगाल ने फ्रांस को हराकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। यह पुर्तगाल की सबसे बड़ी खिताबी जीत है। पेरिस में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच की शुरुआत में ही चोटिल होकर बाहर चले गए थे। फ्रांस की टीम पुर्तगाल पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निर्धारित 90 मिनट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। लेकिन अतिरिक्त समय में 110वें मिनट में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी एडर ने 25 मीटर की दूरी से गोल दागकर सबको हैरान कर दिया।
The striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team.
इस गोल के साथ ही पुर्तगाल के खिलाड़ियों ने अपने कप्तान रोनाल्डो को उनके करियर का सबसे बेशकीमती तोहफा दे दिया। मैच के बाद हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने बात की खेल पत्रकार नोवी कपाड़िया से।
बिल्कुल बात सही है, सबसे बड़ा तोहफा रोनाल्डो केवल 15 मिनट खेले, 24वें मिनट में तो बाहर चले गए थे। 15 मिनट तक खेले, फिर उन्हें चोट लगी और उस समय तो लग रहा था कि पोर्चुगल की किस्मत फिर खराब होती जा रही है और रोनाल्डो का भी किस्मत खराब हो रहा है। लेकिन ये है कि पोर्चुगल ने दिखा दिया कि वो एक्स्ट्रा टाइम के बादशाह है। 3 मैच वो एक्स्ट्रा टाइम में जीत चुके हैं, पोलैंड के साथ पेनल्टीज, क्रोएशिया के साथ भी इसी तरह अंतिम समय में, उस समय रिकार्डो करिज्मा ने गोल किया था, रोनाल्डो का शॉट रिबाउंड आया था, और यहाँ ये 28 साल के एदेर जो बहुत ही कम गोल कर चुके, घुटने में चोट था, इंग्लैंड की क्लब स्वांसी सिटी ने उन्हें छोड़ दिया था और वो फ्रांस में खेल रहे लील में, उन्होंने एक बहुत शानदार शॉट लगाया कि ह्यूगो लोरिस रोक नहीं सके। और ये बात बिल्कुल सही है कि रोनाल्डो के हटने से झटका लगने के बदले पोर्चुगल की मन शक्ति इतनी अच्छी हो गई, इतने वो मतलब शक्ति से खेले कि भाई हम रोनाल्डो के लिए ये ट्रॉफी जीतेंगे। और आज डिफेंस की पूरी तारीफ करनी होगी, आज रोनाल्डो हीरो नहीं है, पेपे हीरो है, जो रॉयल मैड्रिड उनके टीममेट है, वो भी कोई जवान नहीं है, काफी सालों से खेल रहे हैं पेपे, और 33 साल की उम्र है उनकी। और आज उनकी जो मतलब जंपिंग थी, क्लियरेंस थी, टैकलिंग थी, और सबसे अच्छी बात है उन्होंने अपना गुस्सा नहीं खोया, और पूरी टीम पोर्चुगल की, जोआओ मारियो, और देखो पोर्चुगल की जीत की सबसे शानदार बात है कि जो उनके दिग्गज खिलाड़ी थे, रोनाल्डो तो चोट के कारण बाहर हो गए, रेनाटो सांचेस जिनकी इतनी तारीफ हो रही है कि सबसे शानदार जूनियर मिडफील्डर, यंग मिडफील्डर है, वो भी खास खेले नहीं, तो कोच की भी हमें तारीफ करेगी सैंटोस की कि वो जो कहते हैं एक बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने, देखा कि रेनाटो सांचेस भी नहीं खेल रहे अच्छी तरह, उन्हें हटा के एदेर को लाए और एदेर ने विनिंग गोल किया। कई कोच ऐसे मौकों पे सेफ्टी खेलते हैं कि भाई इतना बड़ा नामी खिलाड़ी को नहीं हटाएंगे, हम हार जाएंगे तो फिर सारे मतलब आलोचना होगी कि ये क्या गलती की, लेकिन सैंटोस बहुत ही अच्छे 61 साल के कोच, और इनके लिए भी सबसे एक बड़ा तोहफा मिला है, इनके भी एक पहली बड़ी ट्रॉफी मिली है फर्नांडो सैंटोस को। और आंकड़े भी दिखाते, जब से वो कोच बने 14 मैच लगातार पोर्चुगल एक भी मैच हारी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक टीम स्पिरिट और एक बहुत अच्छा उनका डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, और जो मतलब भावना थी कि कुछ भी होए हम हारेंगे नहीं, तो फ्रांस के सपने उन्होंने पेरिस में नष्ट कर दिए।
ये थे खेल पत्रकार नोवी कपाड़िया जो बता रहे थे कि कोच सैंटोस ने सही समय पर सही फैसला लिया था। खेलों की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सुपर संडे को खेले गए दूसरे बड़े फाइनल मुकाबले की। हम बात कर रहे हैं विंबलडन की, जहां ब्रिटेन के मेजबान खिलाड़ी एंडी मरे ने कनाडा के मिलोस राउनिक को सीधे सेटों में हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं अपूर्व कृष्ण।
विंबलडन 2016 अपडेट।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। ब्रिटेन के एंडी मरे ने कल दूसरी बार विंबलडन जीतकर ब्रेक्जिट परिणामों के बाद से थोड़े बुझे बुझे ब्रिटेन में एक नया उमंग भर दिया। लोकल हीरो मरे के इस मैच को लेकर ब्रिटेन में जबरदस्त उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैच देखने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अपनी माँ मैरी कैमरन के साथ और प्रिंस विलियम अपनी पत्नी केट मिडल्टन के साथ सेंटर कोर्ट की दीर्घा में मौजूद थे। कल फाइनल में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी एंडी मरे ने कनाडा के छठी सीट के खिलाड़ी मिलोस राउनिच को सीधे सेटों में 6-4, 7-6, 7-6 से मात दी। 29 वर्षीय मरे 11वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का फाइनल खेल रहे थे, जबकि राउनिच के लिए ये किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का पहला फाइनल था। वो इस बार विंबलडन में सबसे तेज 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज सर्विस कर रहे थे, मगर कल एंडी मरे ने पहले सेट में न केवल मिलोविच की सर्विस का सामना किया बल्कि उनकी सर्विस ब्रेक भी कर डाली और पहला सेट हासिल कर बढ़त बना ली। दूसरे सेट में मुकाबला बराबरी पर था, मगर टाई ब्रेकर में मरे ने बढ़त बनाई और ये सेट भी जीत लिया। तीसरे सेट में राउनिच ने कड़ी चुनौती दी और 2-2 बार मरे की सर्विस ब्रेक करने के करीब पहुंच गए, लेकिन मरे ने सर्विस बचाई और मुकाबला बल्ला फिर टाई ब्रेक में गया। मरे ने फिर दूसरे सेट की तरह बढ़त बनाई और अंततः तीसरा सेट जीतकर विंबलडन चैंपियन बने। 2013 में उनकी जीत से 77 साल बाद ब्रिटेन का कोई खिलाड़ी विंबलडन विजेता बना था। कल मैच पूरा होने के बाद मरे बेहद भावुक हो गए और रो पड़े। मैच के बाद उन्होंने कहा कि विंबलडन उनके लिए कितना अहम है।
You know, the most important tournament for me every year.
ये मेरे लिए हर साल सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती है। यहाँ मेरे सामने कई बड़े क्षण आए हैं और मैंने कई बड़ी नाकामियां देखी हैं। इसलिए उन नाकामियों की वजह से ये जीत खास बन जाती है और मैं इस ट्रॉफी को दोबारा हाथ में लेकर काफी खुश हूँ। एंडी मरे के शब्द। वहीं राउनिच ने कहा वो फिर लौटेंगे।
It's a difficult challenge as is, and Andy's been playing great.
ये मुश्किल चुनौती थी, मगर एंडी अच्छा खेल रहे थे। वो दूसरी बार जीतने के हकदार हैं। मुझे इसकी तकलीफ होगी, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस हरी घास पर खेलने दोबारा लौटूं। मिलोस राउनिच के शब्द, जो किसी ग्रैंड स्लैम मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाले कनाडा के पहले खिलाड़ी हैं। इस साल के विंबलडन को कई बातों के लिए याद रखा जाएगा, मगर सरीना विलियम्स के लिए यह विंबलडन बेहद कामयाब रहा। उन्होंने यहां अपना सातवां खिताब जीतकर स्टेफी ग्राफ के 22 ग्रैंड स्लैम खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। सरीना ने इस बार विंबलडन में अपनी बहन वीनस विलियम्स के साथ महिलाओं का डबल्स खिताब भी जीता। अपूर्व कृष्ण, BBC विंबलडन।
खेल की खबरों के बाद और अब रुख करते हैं भारत का। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। कई इलाकों में कर्फ्यू अब भी लागू है। मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर रोक जारी है। सीधे चलते हैं श्रीनगर BBC संवाददाता रियाज मसरूर के पास। रियाज, राज्य और केंद्र की शांति की अपील कल शाम से जारी है, अब तक उसका कितना असर हुआ है, क्या है ताज़ा हालात?
जी देखें, पहले तो मैं ये अपडेट कर दूं कि 23 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, क्योंकि कल जो ताज़ा घटनाएं घटी थी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों की, उसमें जो फायरिंग की घटनाएं हुई थी उसमें 5 लोग मारे गए थे कल देर रात तक, और 5 लोग जख्मियों में से जो है घायल जो हुए थे। कोई 300 लोग घायल हैं, जिसमें 100 लोग तो सुरक्षा और पुलिसकर्मी हैं, तो उनमें से भी 5 लोग जो है उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ा था। तो इस तरह से कल का डेथ टोल कल दिन का 10 रहा, और जो 2 पुलिसकर्मी हैं उनकी भी मौत हुई है। एक पुलिसकर्मी की मौत जो है उसको मॉब ने एक गाड़ी को अनंतनाग में दरिया में फेंक दिया, उसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। तो डेथ टोल जो है वो बढ़ ही रहा है। अब जो शांति बनाने की अपील है उसका असर अभी देखने में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक कर्फ्यू में किसी तरह की कोई डील नहीं है। आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि कल जो केंद्र की तरफ से अधिकतम सुरक्षा बलों को यहाँ भेजा था, कोई 2000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ भेजा गया था, उनको तैनात किया गया है संवेदनशील इलाकों में। तो कर्फ्यू में किसी तरह की कोई डील नहीं दी जा रही है और हर तरफ से सन्नाटा है। और अब जो है, चूंकि ये ईद के बाद ही ये घटना घटी थी शुक्रवार को, तो सामग्री वगैरह घरों में थी, तो अगर कर्फ्यू प्रोलॉन्ग होता है, ज़्यादा खिंच जाता है ये मामला, तो दवाइयों की जो है वो किल्लत पैदा हो सकती है, और लोगों को अभी तो लोगों को भी ट्रांसपोर्टेशन में किल्लत हो रही है, यानी बीमारों को अस्पताल जाते हुए किल्लत हो रही है। कल भी कई इलाकों से ये शिकायतें आई कि जो CRPF के पर्सनल हैं या कई कुछ कुछ जगहों पे जो पथराव करने वाले लोग हैं वो एम्बुलेंसेस को निशाना बनाते हैं। तो इस तरह से एक क्राइसिस सिचुएशन जो शुक्रवार से बना हुआ है वो अभी तक इंटैक्ट है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाके बाढ़ में डूबे हैं। रायसेन, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और सागर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में फंसकर अब तक 22 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सीधे चलते हैं भोपाल अपने सहयोगी शुरह नियाजी के पास। शुरह, क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास?
देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति थी, धीरे धीरे उसमें सुधार जरूर आ रहा है, लेकिन जो उज्जैन है वहां पर शिप्रा और बुरहानपुर जो है ताप्ती और बेतवा जो नदी है वहां पर वो उफान पर हैं और शहर में पानी भर रहा है। उसी तरह की स्थिति हम देख रहे हैं विदिशा में, जहां पर अभी भी भारी वर्षा हुई है, उसकी वजह से वहां पे स्थिति काफी खराब है। लेकिन मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी जो वार्निंग दी है उसमें भोपाल, इंदौर, रायसेन, होशंगाबाद और हरदा समेत कई इलाके हैं जहां पर चेतावनी दी है। तो प्रशासन अभी इस पे पूरी नजर रखे हुए है और जो राहत केंद्र हैं वो चल रहे हैं। अभी तक तकरीबन 3.25 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हैं
जी। और मौसम विभाग ने आज भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, प्रशासन की तरफ से लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जा रही है?
देखिए, कल जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 घंटे जो सेंटर्स हैं, हेल्पलाइन सेंटर्स हैं, वो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो अभी जारी रहेंगे। वहीं पर राहत शिविरों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक पूरी
लगता है हमारा संपर्क टूट गया है उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो अभी हाल तक सूखे से जूझ रहा था, अब वहाँ बारिश ने राज्य को की कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। करीब 1 दर्जन ज़िलों में बारिश की वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश और बाढ़ से जुड़े हादसों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। सुनिए संजय तिवारी की रिपोर्ट।
सूखे के बाद अब महाराष्ट्र पर पड़ी है बारिश और बाढ़ की मार। बारिश और बाढ़ से जुड़े हादसों की वजह से कम 3 लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग प्रभावित हैं। पूर्वी विदर्भ के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया और भंडारा में औसत से कहीं ज्यादा बारिश होने से कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा में भी लगातार 4 दिनों से बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा हुआ है। अकोला में पानी कई घरों में घुस गया है। उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक में 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नदियों का जलस्तर बढ़ने से 100 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया है। दक्षिणी गढ़चिरौली के अहेरी के पास बाढ़ में फंसे एक युवक रंगैया रेपकवार ने बताया,
पानी नदी में पानी बढ़ रहा है पानी, क्योंकि गोसी उदाहरण के 33 दरवाजे भी खुले हो गए, उस वजह से बाढ़ का भी संभावना है। और वो जो गड़ेरी का नाला वजह से 20 गांव का संपर्क टूटा है, वो नाला भर के है सर, उस वजह से हम कहीं जा नहीं सकते सर।
पूर्वी विदर्भ के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया और भंडारा में नदियों के किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी खेतों में और बस्तियों में घुसने की खबरें हैं। गढ़चिरौली के जिलाधिकारी रंगनायक ने माना कि लगभग 100 से 150 गांवों से संपर्क टूट गया है।
गढ़चिरौली में 4 तालुका में कुछ पूर का प्रॉब्लम है। एक तालुका हेडक्वार्टर का संपर्क नहीं हो पा रहा है, दूसरा तालुका में 25 गांव संपर्क से बाहर है। मेरा गो 30 हाउसेस हैव बीन पार्शियली डैमेज्ड एंड देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ एंड 2 or 3 यू नो एनिमल्स, बिग एनिमल्स हैव बीन यू नो लॉस्ट टू दिस रेन।
पश्चिमी महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर के इलाकों में लगातार बारिश होने से नदी, बांध और तालाबों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक में 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घर, दुकान और कई मॉल्स के तल घरों में पानी घुस आया है। नासिक महानगर पालिका के कमिश्नर अभिषेक कृष्णा ने BBC को बताया,
शाम के वक्त पानी की ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन जो नदी काट के जो एरिया है उस साइड में, खास तौर पर पंचवटी और लालझोपड़पट्टी का एक एरिया है, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति थी। उसकी वजह से 150 लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। कुछ लोगों को समाज मंदिर में रखा गया और कुछ लोग अपने खासगी जगहों पर शिफ्ट हुए। अभी परिस्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमारी मेडिकल टीम और फायर टीम एकदम तैयार है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए।
पिछले 24 घंटों में कोयना बांध में 2 TMC पानी और भंडारदरा बांध में 1 TMC पानी बढ़ने की जानकारी सरकारी अधिकारियों ने दी है। महाराष्ट्र के नागपुर से BBC के लिए संजय तिवारी।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक आज से कानपुर में हो रही है। ये बैठक 15 जुलाई तक चलेगी। इस बैठक में RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से संघ की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। हालांकि संघ का कहना है कि उसके एजेंडे में चुनाव नहीं होते हैं। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
कानपुर के पास बिठूर में गंगा किनारे RSS का वार्षिक सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। यूं तो सम्मेलन की तिथि और जगह दोनों पहले से ही तय होते हैं, लेकिन अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कानपुर में हो रहे इस सम्मेलन को लेकर चर्चाएं कुछ ज्यादा हैं। हालांकि संघ के नेता इस सम्मेलन का समीकरण चुनाव के साथ बैठाने को ठीक नहीं मानते। बीबीसी से बातचीत में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने बताया,
लोगों को और कुछ सोचता भी नहीं है और दिखता भी नहीं है, इसलिए लिखते रहते हैं तब वो उसमें मतलब अर्थ नहीं, उसमें ये फोरम नहीं उसका, और हमको प्लानिंग भी नहीं करना, एक तो हमारा काम नहीं है। दो एजेंडा रहते हैं, एक हमारे अप्रैल से जून तक ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं तो उसका सारा रिव्यू होता है, मोर देन 76 कैंप्स, और अगले वर्ष का पूरा साल भर का प्लानिंग होता है, प्रोग्राम्स टूर्स ऑफ अखिल भारतीय अधिकारी, किसी प्रांतों में कोई विशेष बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसके बारे में, कुछ ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं साल भर में कुछ विशेष, तो उसका सारा प्लानिंग होता है। इस वर्ष एडिशनल 3 दिन के लिए सभी प्रांत प्रचारकों का प्रशिक्षण वर्ग होता है, अभ्यास वर्ग होता है।
मनमोहन वैद्य के मुताबिक सम्मेलन दो चरणों में होगा। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक प्रांत प्रचारकों की बैठक चलेगी और दूसरे चरण की बैठक में संघ के प्रांत प्रचारकों के अलावा संघ से जुड़े दूसरे संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ जैसे 40 सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे। तीसरे चरण की बैठक में केवल आरएसएस के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे जो दोनों चरणों की बैठकों की समीक्षा करेंगे। संघ के पदाधिकारी भले ही बैठक को विधानसभा चुनाव से देखने को उचित न मानते हों, लेकिन जानकारों का कहना है कि बैठक के मुख्य एजेंडे में चुनावी रणनीति ही होगी। लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं कि संघ की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया जाए।
जो आरएसएस जो बीजेपी एजेंडा टेस्टेड एजेंडा है हार्डकोर हिंदुत्व का, और उत्तर प्रदेश उसके लिए बड़ा फर्टाइल ग्राउंड है। आप देखिए अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कम्युनल टेंशन के इंसिडेंट्स है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, जैसे वो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं कि उसका जो एक माइनॉरिटी का स्टेटस है उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके एमपी मिनिस्टर लगातार राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बात करते रहे हैं कि मुझे लगता है हार्ड कोर हिंदुत्व पर ही वो लड़ेंगे, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बात करें, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो रिलीजियस लाइन पर पोलराइज करेंगे वोट को, सेफ्रॉन मूड जनरेट करने की कोशिश की जाए।
चर्चाएं ऐसी भी हैं कि हफ्ते भर चलने वाली इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे। संघ के पदाधिकारियों ने तो इस बारे में कुछ भी बताने से इंकार किया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि आरएसएस की बैठक में भाजपा नेताओं का आना कोई नई बात नहीं है, वो भी जब ये बैठक चुनावी समय में और चुनावी राज्य में हो रही हो तो इसकी संभावना और पुख्ता हो जाती है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए सभी सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन विभागों में बदलाव से बीजेपी के नेता ही नाराज हो गए। खबरें हैं कि सहयोगी दल शिवसेना भी इस विस्तार से खुश नहीं। दूसरी तरफ नए मंत्रियों पर विपक्षी कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई से अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में हुए मंत्रिपरिषद विस्तार से सरकार द्वारा समन्वय साधने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन लगता है कि इसमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। शनिवार देर रात विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर रवाना हो गए। जैसे ही विभागों में बदलाव की खबर आई, भाजपा के अंदर ही असंतोष की स्थिति पैदा हो गई। पूर्व जल संधारण मंत्री पंकजा मुंडे ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वह सिंगापुर के दौरे पर हैं और वहां एक जल परिषद में उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन चूंकि अब उनके पास यह विभाग नहीं है तो वह इस परिषद में हिस्सा नहीं लेंगी। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि वह राज्य सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर इस जल परिषद में शामिल हो सकती है। मंत्रिपरिषद में शामिल नए मंत्रियों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार में शामिल नए मंत्रियों पर कई तरह के संगीन आरोप है, ऐसे मंत्रियों को तुरंत हटा देना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा,
देखिए निश्चित तौर पर जो बातें मोदी जी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि भ्रष्टाचार विमुक्त हम प्रशासन देंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज जिस तरह से ये नया जो मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया गया है, इसमें जो मंत्री है ये पूरी तरह से दागी तो है ही, लेकिन ये प्रतीक है भ्रष्टाचार के, और बजाय इसके कि वो कार्रवाई करें को मंत्रिमंडल में शामिल करके उनका सम्मान किया जा रहा है। विधानसभा विधिमंडल का अधिवेशन चालू होने वाला है, निश्चित तौर पर सरकार को आड़े हाथ लेंगे।
ये थे सचिन सावंत। इस पर भाजपा की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि जिन तथाकथित संगीन आरोपों की बात विपक्ष द्वारा की जा रही है वह काफी पुराने हैं और उन्हें साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। जब यह आरोप लगे थे तब कांग्रेस सत्ता में थी, उन्हें चाहिए था कि इन आरोपों की छानबीन कर दोषियों को सजा देते। हमने महाराष्ट्र भाजपा के मुख्य प्रवक्ता माधव भंडारी से बात की।
कांग्रेस की आज की जो आलोचना है, कांग्रेस आज जो आक्षेप ले रही है, वो सारे आक्षेप बेबुनियाद है और इन आक्षेप उठाने का कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं।
ये थे माधव भंडारी। मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर शिवसेना भी नाराज है। शिवसेना की मांग थी कि उसे दो कैबिनेट तथा दो राज्य मंत्री पद दिए जाए, लेकिन भाजपा ने उसे सिर्फ दो राज्य मंत्री पद दिए हैं, जिसकी वजह से शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। लेकिन बाद में उन्होंने इसका कारण भी जाहिर किया। शिवसेना एक ओर अपने मुखपत्र में इस विस्तार को एक औपचारिकता कह रही है, वहीं दूसरी ओर इस पर समाधान भी व्यक्त कर रही है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे से हमने इस बारे में बात की।
देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम सरकार में शामिल हुए 2014 में, तो तभी का जो फॉर्मूला तय था वही इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। हम युति की मर्यादा जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो कम कर दिए गए, कुछ विवाद उनके इर्द गिर्द में थे, मगर वो उनका अंदरूनी मामला है। माननीय उद्धव जी ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस, इनके संबंध अच्छे हैं और निश्चित ही ये सरकार 5 साल चलेगी।
ये थी मनीषा कायंदे। हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य लग रही है, लेकिन आने वाले मॉनसून सत्र में सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीबीसी हिंदी के लिए मुंबई से अश्विन अघोर।
जब जीवन बचाने वाला डॉक्टर ही मौत का कारण बन जाए।
मेरे होश उड़ गए जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी हमने ये निकाल दिए हैं, दोनों ओवरीज निकाल दिए हैं और यूट्रस भी निकाल दिया है।
जब डॉक्टर ही आपकी तबाही की वजह बन जाए।
I would never advise anybody to come to India. The hospital is not responding, which is the height of inhumanity.
जब जिंदगी न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई बन जाए।
मैंने अपना सारा प्रोफेशन ही छोड़ दिया है, तो मेरी तो पूरी लाइफ इसी तरह से बीत गई है, तो ऐसा जो है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं।
जीवन से खेलते डॉक्टरों से कब मांगा जाएगा जवाब? मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
अभी जो ऊपर लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर लोगों को सस्ता, तर्कसंगत और कानूनी बढ़िया इलाज देने की जिम्मेवारी है, उनका झुकाव डॉक्टरों द्वारा बनाए जा रहे पैसे की तरफ है।
क्या सफाई देते हैं डॉक्टर?
कहां करप्शन नहीं है, ये मैं करप्शन डिफेंड नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर, पर है तो एक्शन लो उनके खिलाफ, एक्शन बड़ा सिंपल है।
और क्या आपके भी हैं कोई अधिकार? मैं विनीत खरे बीबीसी हिंदी रेडियो पर पेश करूंगा खास रिपोर्टें 11 जुलाई से दिन भर और नमस्कार भारत में।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में आ गए हैं। बहुत सारे अखबार इन्होंने चारों तरफ फैला रखे हैं और सबसे ज्यादा गौर से ये दैनिक भास्कर की वो खबर देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। क्या है ये खबर?
जी, दैनिक भास्कर ने खास खबर प्रकाशित की है पहले पन्ने पर, जिसके मुताबिक खुद जाल में फंसा था बुरहान वानी, सेना ने घेरा तब नशे में था, 4 फीट दूर से मारा गया। ये जो अभियान में शामिल सैन्य अधिकारी थे उनके हवाले से खबर लिखी गई है और इसमें बताया है कि सेना ने ही किसी लड़की के जरिए उसको बुरहान वानी को एक ठिकाने पर बुलाया था और जिस घर में वो थे वहां पर पीछे से आग लगा दी गई। जब वो आग से बाहर निकले तब उनके पास कोई हथियार नहीं थे, आमतौर पर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रहते थे, भारी हथियारों से लैस रहते थे, लेकिन जब पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हुई उस समय उनके पास सिर्फ एक पिस्टल थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है, और बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ नहीं थे। ये भी कहा गया है कि उस समय वो नशे की हालत में थे जब उनकी मौत हुई। और बुरहान वानी की मौत के बाद जो कश्मीर में हालात तनावपूर्ण हुए हैं उससे जुड़ी हुई खबरें अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। अमर उजाला लिखता है घाटी में हालात अब भी बेकाबू, 9 और मरे। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पुलिसकर्मी को झेलम नदी में फेंके जाने की घटना को शीर्षक बनाया है और बाकी अखबारों में भी ये खबर है। जिक्र करूंगा एक खास खबर का जो द इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर प्रकाशित है। इसके मुताबिक ओडिशा के कंधमाल में हाल ही में पुलिस और संदिग्ध माओवादियों के बीच गोलीबारी में कहा गया था क्रॉस फायरिंग में कुछ गांव के लोग मारे गए हैं। इसमें एक महिला के पति ने कहा है कि जब मैं घर लौटा तो मेरी बीवी मरी हुई थी और उनको शक है कि शायद जो कहानी पुलिस बता रही है वो सही ना हो। दैनिक जागरण एक खबर पर लिखता है कि जाकिर नाइक की गिरफ्तारी जल्द नहीं होगी, पूरी जांच के बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा
जी दिलनवाज आपसे ही कहूंगा कि जल्दी से जो मुख्य खबरें हैं वो भी सुना दीजिए।
जी आज मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। यूरो कप के पेरिस में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में पुर्तगाल ने फ्रांस को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद दक्षिण सूडान में हो रही ताज़ा हिंसा पर चर्चा के लिए आपात बैठक कर रही है। अमरीकी शहर डलस के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि 5 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला हमलावर और बड़े हमले की योजना बना रहा था। अमेरिका के लुइजियाना प्रांत में हिरासत में लिए गए ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के एक प्रमुख कार्यकर्ता को रिहा कर दिया गया है। और जापान में उच्च सदन की आधी सीटों के लिए रविवार को हुए चुनाव के अंतिम नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पार्टी ने बेहद अहम 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया अजित सारथी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।